नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके प्रचार तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों को प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है।
ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। ये योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,66,00,000 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को 4 सप्ताह के भीतर खनन में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों को नाम सुझाने का निर्देश दिया। विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। मंत्रालय के अनुसार इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट घंटे और वर्ष 2047 तक 4000 किलोवाट घंटे से अधिक करना है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश दिया है। न्यायालय के आदेश में तार्किक विसंगतियों और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है। साथ ही प्रभावित मतदाताओं की परेशानियों की सुनवाई और निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने का अवसर प्रदान किया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को SIR के दौरान कड़ी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। नीति आयोग ने सीमेंट, एल्यूमिनियम और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की कार्य योजना प्रस्तुत की। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि भारत के विकास में MSME क्षेत्र और सतत आर्थिक विकास की भूमिका बेहद अहम है। इस बीच नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि एल्यूमिनियम और सीमेंट क्षेत्र सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाले क्षेत्रों में से हैं, जो औद्योगिक उत्सर्जन में योगदान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा पर काम कर रहा है। दाओस में विश्व आर्थिक मंच 2026 की बैठक में श्री वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख के भारत को दूसरे दर्जे की AI शक्ति बताने वाले बयान को पूरी तरह से खारिज किया। स्टैनफोर्ड रैंकिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि AI तैयारियों में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। और खेलों में भारत ने 5 मैच की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 238 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद पर 84 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।